नमस्ते, मैं हूँ शुची और स्वागत है आपका काव्य रचना कार्यक्रम में, जिसे आप सुन रहे हैं वार्ता पे। अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित था। स्वयं अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो सूफियाना कवि थे और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। इनका जन्म 1253 में हुआ था। खुसरो को भारत की आवाज या भारत का तोता, तृतीय हिंद के रूप में भी जाना गया और उन्हें उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में, जब दिल्ली का राज सिंहासन गुलाम वंश के सुल्तानों के अधीन हो रहा था, अमीर सैफुद्दीन नामक एक सरदार बल्ख हजारा से मुगलों के अत्याचार के कारण भागकर भारत आया और एटा के पटियाला नामक ग्राम में रहने लगा। सौभाग्य से सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार में उसकी पहुंच जल्दी हो गई और अपने गुणों के कारण वो उसका सरदार बन गया। भारत में उसने नवाब इमादुल मुल्क की पुत्री से विवाह किया। खुसरो की माँ एक ऐसे परिवार की थी जो मूलतः हिंदू थी, पर उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इनकी मातृभाषा हिंदी थी। इनके नाना का नाम रावल इमादुल मुल्क था। ये बाद में नवाब इमादुल मुल्क के नाम से प्रसिद्ध हुए और बलबन के युद्ध मंत्री बने। किशोर अवस्था में खुसरो ने कविता लिखना प्रारंभ किया और 20 वर्ष के होते होते वो कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। खुसरो में व्यवहारिक बुद्धि की कमी नहीं थी। सामाजिक जीवन की खुसरो ने कभी अवहेलना नहीं की। खुसरो ने अपना सारा जीवन राजश्रेय में ही बिताया। राज दरबार में रहते हुए भी खुसरो हमेशा कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक ही बने रहे। खुसरो के पिता अमीर सैफुद्दीन मोहम्मद इनके जन्म से पूर्व तुर्की में लाचीन कबीले के सरदार थे। कबीलों के आपसी संघर्ष से घबराकर वो हिंदुस्तान भाग आए थे। इत्तफाकन इनका संपर्क सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दरबारी से हुआ। अपने साहस और सूझबूझ से ये सरदार बन गए और वहीं एक नवाब की बेटी से शादी हो गई और 3 बेटे पैदा हुए। उनमें से बीच वाले अबुल हसन ही अमीर खुसरो थे। इनके पिता खुद तो खास पढ़े ना थे, पर उन्होंने अमीर खुसरो में कुछ ऐसा देखा कि इनके पढ़ने का उम्दा इंतजाम किया। एक दिन वो इन्हें ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पास ले गए, जो कि उन दिनों के जाने माने सूफी संत थे। तब उन्होंने उत्सुकतावश जानना चाहा कि वो यहाँ क्यों लाए गए हैं। तब पिता ने कहा कि तुम इनके मुरीद बनोगे और यही अपनी तालीम हासिल करोगे। उन्होंने पूछा मुरीद क्या होता है, तो पिता ने उत्तर दिया मुरीद होता है इरादा करने वाला, ज्ञान प्राप्त करने का इरादा करने वाला। अबुल हसन जो कि बच्चे थे, उन्होंने मना कर दिया कि उसे नहीं बनना किसी का मुरीद और वो दरवाजे पर ही बैठ गए। उनके पिता अंदर चले गए। बैठे बैठे इन्होंने सोचा कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अगर ऐसे ही पहुँचे हुए हैं तो वो अंदर बैठे बैठे ही मेरी बात समझ जाएंगे जो मैं सोच रहा हूँ। और उन्होंने मन ही मन संत से पूछा, मैं अंदर आऊँ या बाहर से ही लौट जाऊँ। तभी अंदर से औलिया का सेवक हाजिर हुआ और उसने इनसे कहा कि ख्वाजा साहब ने कहलवाया है कि जो तुम अपने दिल में मुझसे पूछ रहे हो वो मैंने जान लिया है और उसका जवाब ये है कि अगर तुम सच्चाई की खोज करने का इरादा लेकर आए हो तो अंदर आ जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे मन में सच्चाई की जानकारी हासिल करने की तमन्ना नहीं है तो जिस रास्ते से आए हो वापस चले जाओ। फिर क्या था, वो जा लिपटे अपने ख्वाजा के कदमों से। तब से इन पर काव्य और गीत संगीत का नशा सा चढ़ गया और इन्होंने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को अपना प्रिय मानकर अनेकों गजलें और शेर कहे। इनके पिता 85 वर्ष की अवस्था में किसी लड़ाई में मारे गए। तब इनकी शिक्षा का भार इनके नाना नवाब इमादुल मुल्क ने अपने ऊपर ले लिया। कहते हैं कि उनकी अवस्था उस समय 13 वर्ष की थी। एक बार की बात है, तब खुसरो घियासुद्दीन तुगलक के दिल्ली दरबार में दरबारी थे। तुगलक खुसरो को तो चाहता था, मगर हजरत निजामुद्दीन के नाम से चिढ़ता था। खुसरो को तुगलक की यही बात नागवार गुजरती थी, मगर वो क्या कर सकता था। घियासुद्दीन तुगलक एक बार कहीं बाहर से दिल्ली लौट रहा था, तभी चिढ़कर उसने खुसरो से कहा कि हजरत निजामुद्दीन को पहले ही आगे जाकर ये संदेश दे दो कि बादशाह के दिल्ली पहुंचने से पहले ही वो दिल्ली छोड़कर चले जाए। खुसरो को बड़ी तकलीफ हुई, पर अपने संत को ये संदेश कहा और पूछा अब क्या होगा। ख्वाजा निजामुद्दीन ने जवाब दिया, कुछ नहीं खुसरो, तुम घबराओ मत, अभी दिल्ली बहुत दूर है। सचमुच बादशाह के लिए दिल्ली बहुत दूर हो गई। रास्ते में ही एक पड़ाव के समय वो जिस खेमे में ठहरा था, भयंकर अंधड़ से वो टूटकर गिर गया और उसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। तभी से ये कहावत है, अभी दिल्ली दूर है, पहले खुसरो की शायरी में आई, फिर हिंदी में प्रचलित हो गई। 6 वर्ष तक ये जलालुद्दीन खिलजी और उसके पुत्र अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी रहे। ये तब भी अलाउद्दीन खिलजी के करीब थे जब उसने चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नसेन की पत्नी पद्मिनी को हासिल करने की ठान ली थी। तब ये उसके दरबार के खुसरू ए शायरा के खिताब से सुशोभित थे। इन्होंने पद्मिनी को बल के जोर पर हासिल करने के प्रति अलाउद्दीन खिलजी का नजरिया बदलने की कोशिश की, ये कहकर कि ऐसा करने से असली खुशी नहीं हासिल होगी। स्त्री हृदय पर शासन स्नेह से ही किया जा सकता है, वो सच्ची राजपुताना है, जान दे देगी और आप उसे हासिल नहीं कर सकेंगे। अमीर खुसरो 14वीं सदी के हिंदी खड़ी बोली के पहले लोकप्रिय कवि थे, जिन्होंने कई गजल, ख्याल, कव्वाली, रुबाई और तराना आदि की रचनाएं की थी। वो सूफियाना कवि थे और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मुरीद भी थे। साहित्य के अतिरिक्त संगीत के क्षेत्र में भी खुसरो का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने भारतीय और ईरानी रागों का सुंदर मिश्रण किया और एक नवीन राग शैली इमान, जिल्फ, साजगरी आदि को जन्म दिया। भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को इन्हीं की देन माना जाता है। इन्होंने गीत की तर्ज पर फारसी में और अरबी गजल के शब्दों को मिलाकर कई पहेलियां और दोहे लिखे। दोस्तों, ये है काव्य रचना कार्यक्रम जिसे आप सुन रहे थे वार्ता पे, और ये है ग्लिट्स डिजिटल प्रोडक्शन।